आलू अनुसंधान संस्थान शिमला पिछले 54 वर्षों से देश में आलू की फसल के विकास के लिए अनुसंधान कार्य कर रहा है। संस्थान ने अब तक आलू की 35 नई किस्में जारी की हो और प्रजनन, बीज उत्पादन, सभी जलवायु क्षेत्रों के लिए कृषि तकनीक, तकनीकी प्रशिक्षण, किसान गोष्ठियाँ, प्रदर्शनियाँ व आकाशवाणी पर पाठशालाएं जैसे अनेक कार्यक्रम प्रस्तुत करता रहा है। संस्थान ने राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय ख्याति व पुरस्कार प्राप्त किए हैं। इसी कारण भारतवर्ष में आलू का उत्पादन लगभग 14 से 15 गुना बढ़ा है। इस रेडियो पाठशाला में किसान भाई बहनों को आलू उत्पादन, विपणन या भंडारण संबंधी पहलुओं पर संस्थान में कार्यरत वैज्ञानिकों द्वारा विस्तार से जानकारी दी जा रही है।
वाह जी, देखो आज की जो हमारी पाठशाला आलू की चली रही है, इसमें आज जो किसानों ने जो चिट्ठियां लिखी है ना, उनके जवाब देने हैं। अब तक तो डॉक्टर ऐसा होता रहा दीजिए भाई, साइंटिस्ट आते थे, अपने मन की बात बोलते थे, जो किसानों के मन में जो सवाल उठते थे उनके जवाब नहीं हो पाते थे।
जी शंकुराम जी, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि जो किसान क्या सोचते हैं, उनकी क्या जरूरतें हैं। जब हम कुछ बात करते हैं तब तो हम अपने हिसाब से किसानों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं, पर जब किसान अपनी दिक्कत या अपनी समस्या हमारे सामने रखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि उनको असल में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
हाँ,
तो उनके प्रश्नों का जो पत्र लिख के हमारे पास भेजते हैं उनका बहुत ही महत्व होता है।
तो ऐसा है जी कि जैसे सुभाष मोदगल जी हैं, ढालपुर से चिट्ठी आई है इनकी, कुल्लू से
जी।
तो कुल्लू से लिखते हैं कि जैसे इन्होंने वो प्रश्नावली जो भेजी थी उसमें इन्होंने अपना नाम और पता नहीं लिखा
जी जी,
और फिर बाद में इनको ख्याल आया जी
जी,
फिर पता लिखा है वो भाई नाम और पता तो लिखा दे, फिर इन्होंने दोबारा से चिट्ठी लिखी।
हाँ, वो चिट्ठी मिली थी हमें सुभाष मोदगल जी को। मैं बताना चाहूंगा कि इनकी जो प्रश्नावली थी उसके ऊपर इनका नाम या पता नहीं था, पर हमने जिस दिन इनकी प्रश्नावली आई थी उसी दिन इनके लिफाफे से पता उतार के प्रश्नावली पे लिख दिया था
जी।
पर मैं सुभाष मोदगल जी को एक और बधाई देना चाहूंगा कि इनकी प्रश्नावली हमारे पास सबसे पहले दिन पहुंची।
अच्छा,
और इसी बधाई के पात्र हमीरपुर लमड़ू के श्री रिखिराम ठाकुर जी भी हैं, उनकी और इनकी दोनों की प्रश्नावलियां एक ही दिन में सबसे पहले हमारे पास पहुंची।
अच्छा, गाँव लमड़ू हमीरपुर से रिखिराम ठाकुर और ढालपुर कुल्लू से सुभाष मोदगल जी फर्स्ट आए हैं,
फर्स्ट आए थे प्रश्नावली भेजने में
जी। अच्छा, ऐसी एक और चिट्ठी आई है जी, गांव पटारना कुल्लू से लिखने वाले हैं प्रेमचंद ठाकुर जी। इन्होंने बड़ी तारीफ की है जी, बड़ी भारी तारीफ कर दी है इन्होंने पाठशाला की। देखो जी, बड़ी खुशी की बात है, पाठशाला शुरू हुई, पर इनको बड़ी भारी चिंता है कि इनका नाम पंजीकरण हुआ कि नहीं हुआ
जी।
और ये 30 तारीख को जो किसान मेला होना है 30 अगस्त को आपके बड़े दफ्तर में शिमला में
जी, जी।
तो कहते हैं कि मैं इसमें भी आना चाहता हूँ
जी। प्रेमचंद ठाकुर जी को मैं ये बताना चाहूंगा कि इन्हें बड़ी खुशी से इस कार्यक्रम में आ सकते हैं। इनका जो आकाशवाणी है उसमें तो इनका पंजीकरण हो ही चुका है, तो बड़ी खुशी से कार्यक्रम में आके से लाभान्वित हो सकते हैं, इसका फायदा उठा सकते हैं। पर मैं अन्य किसानों को जिनका पंजीकरण हमारे पास नहीं भी हुआ है उनको भी ये बताना चाहूंगा कि वो भी इस कार्यक्रम में आ सकते हैं और भाग ले सकते हैं। कार्यक्रम में आने के लिए और भाग लेने के लिए जो आपका पंजीकरण है उसकी आवश्यकता नहीं है। हाँ, मैं ये जरूर अनुरोध करूंगा कि वो एक पोस्ट कार्ड लिख के या एक चिट्ठी लिख के हमें सूचित अवश्य कर दें कि वो इस कार्यक्रम में आना चाहते हैं। और इसके अलावा वो, मैं अपना फोन नंबर उनको दे देता हूँ।
हाँ, फोन नंबर
ये आप अपनी कॉपी पेंसिल लेके जल्दी से लिख लो
जी।
ये अध्यक्ष सामाजिक कल्याण सामाजिक विज्ञान विभाग,
अध्यक्ष
सामाजिक
विज्ञान
संभाग
सीपीआरआई
शिमला उनका टेलीफोन नंबर है 2624923।
दोबारा बता दो ये नंबर, आप
दोबारा से बताऊंगा जी 2624923।
अच्छा, ऐसे भी हो सकता डॉक्टर साहब, जो किसान भाई बैठे हुए ना अभी
जी,
तो अब पेन नहीं है कहीं के पास अभी
जी, जी।
तो प्रोग्राम जब खत्म होने लगेगा पाठशाला का आज का पाठ,
दोबारा
तो इसके अंत में दोबारा बताएंगे,
दोबारा बता देंगे।
तो जो किसान भाई बहन जिन्होंने लिखना चाहते हैं
मैं दोबारा उनको
अपना पेन वगैरह की व्यवस्था तब तक,
बिल्कुल बिल्कुल जी। हाँ, इसके बाद मैं और बताना चाहूंगा कि किसान भाई बहनों को कि जो भी इसमें भाग लेना चाहेंगे कार्यक्रम में, वो उनको बस का किराया, साधारण बस का किराया आने जाने का हम देंगे
जी।
उसके लिए उनको एक तरफ की टिकट जो है जमा करवानी पड़ेगी, आने
टिकट
आती बारी की टिकट जो है उनको जमा करानी पड़ेगी, हम आने जाने दोनों तरफ का उनको किराया देंगे।
अच्छा जी।
और बाकी हम उनके यहाँ पे थोड़े से जलपान की व्यवस्था भी करेंगे
जी
सीपीआरआई में। सीपीआरआई आने के लिए वो क्या, शिमला बस स्टैंड से 2 किलोमीटर दूर दमलोई जगह है,
बेमलोई
बेमलोई
हाँ जी हाँ जी
शिमला बस स्टैंड से बेमलोई तक जाएं, वहां उतर जाएं और वहां पास में ही सीपीआर आई, किसी से पूछेंगे तो पता चल जाएगा उनको।
यानी कि पहले बस स्टैंड उतरना
जी,
वहां से लोकल बस पकड़ो बेमलोई के लिए,
बेमलोई के लिए
जी
2 किलोमीटर का है
और वहां से साथ ही है,
वहां साथ ही है।
अच्छा ऐसी एक चिट्ठी आई है जी गांव नौती कसौली
जी,
ये देवेंद्र सिंह ठाकुर जी दिखने वाले हैं जी, इन्होंने बड़ी तारीफ की है
जी
पाठशाला की, तो भाई पाठशाला ही काबिल तारीफ
जी।
और ये लिखते हैं कि ये बीच में किसी कारण से दो पाठशाला के जो कार्यक्रम है ना, ये पाठशाला के जो दो कार्यक्रम है
जी, जी।
ये सुन नहीं पाए
जी।
अब ये कहते हैं कि दोबारा से उनका जो है ना प्रसारण किया जाए
जी। शंकुराम जी आप इनका प्रश्न जो है वो ठीक है, मैं इनकी इनको भी बधाई देता हूँ कि इतनी रुचि ले रहे हैं कार्यक्रम में, हमारे कार्यक्रम की प्रशंसा काफी लोगों ने की है, पर हमारे प्रशंसा के पात्र हम ही नहीं है, जो इतनी रुचि लेके किसान भाई उसमें हिस्सा ले रहे हैं वो भी इतने ही प्रशंसा के पात्र हैं। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि ये कार्यक्रम जो आयोजित हुआ है ये केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला यानी कि सीपीआरआई और आकाशवाणी शिमला दोनों की मिलके इसको आयोजित किया गया है
जी।
तो इसका पुनर्प्रसारण जो है, दोबारा से इसका प्रसारण करना जो है वो तो आकाशवाणी शिमला ही इसके ऊपर निर्णय लेगा। तो मैं अब आपसे शंकुराम जी ये निवेदन करूंगा कि आप इनका आग्रह स्वीकार करें और इनका कार्यक्रम को
अगर संभव हो है कि जो दो पाठशालाएं नहीं सुन पाए कार्यक्रम नहीं सुन पाए, अब पूरी पाठशाला तो देखो नहीं कर पाएंगे हम, पर जो उन्होंने जानकारी दी गई है ये हम उनको जरूर देंगे।
इसके लिए तो जैसे आगे दूसरा प्रश्न है ना इनका
जी,
इन्हीं का दूसरा प्रश्न है रविंद्र ठाकुर जी का, ये चाहते हैं कि दो कड़ी जो नहीं सुन सके हैं उनकी इनको जानकारी कैसे मिलेगी।
हाँ ये तो है जी, अब जानकारी कैसे मिलेगी, एक तो देखो जी हमने बताई दिया
जी
भी हम इनको जानकारी प्रोग्राम से देंगे।
दूसरा इनको मैं बताना चाहूंगा कि सीपीआरआई जो है वो जितने भी रेडियो के ऊपर वार्ताएं हुई है उनकी सबकी उनके सबके ऊपर आधारित एक पुस्तिका बनाने जा रही है।
अच्छा जी,
और उस पुस्तिका में वैसे ही प्रश्न और उत्तर वैसे के वैसे ही दिए जाएंगे जैसे कि हमारे यहाँ पे आकाशवाणी में प्रसारित हुए हैं। तो उनकी एक एक प्रति जो है सब किसान भाई बहन जो भी आएंगे 30 अगस्त के कार्यक्रम में उनको दी जाएगी।
अच्छा जी,
तो ये उस कार्यक्रम में आके भी उस प्रति को लेके उसका फायदा उठा सकते हैं।
अच्छा जी, आप देखो जी खेमचंद कश्यप जी है जी गाँव छलोट सुनी
जी जी,
ये हमारे बड़े प्रतिशील किसान है, इन्होंने चिट्ठी लिखी है, बड़ी लंबी चिट्ठी लिखी है जी इन्होंने,
बहुत
तो इन्होंने बड़ी तारीफ की है, धन्यवाद किया है सीताराई का आकाशवाणी का
जी जी,
ये आलू की पाठशाला जो है वो शुरू हुई, किसानों को नई नई बातों की जानकारी इससे मिल रही है
जी।
इन्होंने बड़े सवाल पूछे हैं
जी,
इन्होंने पहला सवाल तो ये पूछा है कि ये हिमाचल प्रदेश में जो खाने का आलू है विधायन का आलू है उसका किसानों को पहले बड़ा अच्छा भाव मिलता था
जी,
अब उनको ठीक भाव नहीं मिल रहा, इसका क्या कारण है।
श्री कश्यप जी को मैं बताना चाहूंगा शंकुराम जी कि ये इनकी बात ठीक है कि जो कोल्ड स्टोर का आलू चलता है उसके जो मूल्य उनको मिलता है या जो कोल्ड स्टोर के आलू का दाम होता है उसका असर पहाड़ी आलू के दामों पर पड़ता है
जी।
चाहे पहाड़ी आलू जो है वो आपका खाने के लिए हो, चाहे चिप्स वगैरह बनाने के लिए जैसे जिसको हम बधाईन आलू बोलते हैं
जी,
उसके लिए हो तो उसका फर्क तो पड़ता है। पर फिर भी मैं इनको कश्यप जी को बताना चाहूंगा कि हमारा जो पहाड़ी आलू है चाहे वो किसी भी चाहे खाने के लिए हो चाहे वो विधायन के लिए हो उसको जो मैदानी इलाकों के आलू से ऊंचा मूल्य जरूर मिलता है, अवश्य मिलता रहा है। ऊना और नगरोटा बगवा क्षेत्र के जो किसान हैं जो विधायन के लिए आलू तैयार करते हैं वो तो काफी अच्छा भाव ले रहे हैं, परंतु दिक्कतें हमें कहाँ आती हैं कि एक तो यातायात या दूसरे पहाड़ी क्षेत्रों की जो समस्याएं हैं उनके कारण जो है हमारे किसानों को अगर अच्छा मूल्य मिल भी जाए तो भी जो लाभ नहीं मिल पाता पूरा जी, क्योंकि उनकी लागतें बढ़ जाती हैं खर्चे बढ़ जाते हैं। तो इसके ऊपर इन समस्याओं को कैसे हल करना है, इनका कैसे इनको दूर करते हुए हमने लाभ कैसे अपना ज्यादा कमाना है, इसके ऊपर 19 अगस्त को इसी पाठशाला में 19 अगस्त को बताया जाएगा, तो वो अच्छा। इस कड़ी को अवश्य देखें।
अच्छा, तो मतलब खास बातें इसी के ऊपर होंगी
जी, इसी
कैसे जो है ज्यादा लाभ कमाना है
पहाड़ी किसानों के लिए।
ऐसा ही एक और प्रश्न जो है खेमचंद जी ने पूछा है जी कि अब देखो किसानों ने क्या किया जी, जब खाद आई ना मृगी खाद दवाइयां आई तो खूब खाद खूब दवाइयां अंडा दूध इस्तेमाल करने लगे और उससे हुआ कि जो मिट्टी थी ना जी वो खराब
जी।
अब मिट्टी खराब होने से हुआ कि जो हमारा जो बीज आलू था जिसकी बड़ी भारी मांग होती थी अब उसकी मांग कम होगी
जी।
तो इसके बारे में ये पूछ रहे हैं, आपका विचार जो है आपका मत पूछ रहे हैं
जी जी। शंकुराम जी ठीक है, इनकी बात अपने कश्यप जी की ठीक है कि रासायनिक खादें जो हैं या दवाइयां हैं उनका ज्यादा उपयोग करने से मिट्टी तो खराब हो ही जाती, उसका जो है मिट्टी के स्वास्थ्य पर बुरा असर तो पड़ता है। पर जो हिमाचल प्रदेश के बीज आलू की मांग कम हुई है उसका जो सबसे बड़ा कारण है वो ये रहा कि बीज प्लॉट विधि जो है सीड प्लॉट टेक्निक जिसको बोलते हैं उसके द्वारा मैदानी इलाकों में अब बीज आलू का बीज बनना जो है वो संभव हो गया
जी।
और पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान जो है वो आलू का बीज बना के पूरे भारतवर्ष में बेच रहे हैं। अब मैदानी इलाकों में पैदावार भी ज्यादा होती है और उनको यातायात में भी ढुलाई खर्च भी कम पड़ता है, तो इस वजह से हमारे आलू की जो मांग है वो थोड़ी कम हुई है। बाकी दूसरा कारण सबसे बड़ा इसका ये है कि अब ज्यादातर आलू जो मैदानी इलाकों में वो लगने लगे अक्टूबर सितंबर अक्टूबर में लगने लग गया अगेती फसल में, तो तब तक जो हमारा आलू जो यहाँ से बीज बन के जाता है वो उपयुक्त नहीं होता, उसमें डॉर्मेंसी होती है, अभी तक उसको दो तीन एक महीने का समय चाहिए होता है, जो वो कोल्ड स्टोर वगैरह का आलू जो है वो ज्यादा है उनके लगता है। पर जो जो लेट फसल है जिसको वो जनवरी में लगाते हैं उसमें अभी भी जैसे नीचे दूसरे कर्नाटका वगैरह है दूसरी अपने प्रदेश है वहां पे हमारी जो यहाँ का बीज आलू है उसकी मांग अभी भी है।
अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसा ही है कि हमने पूछा है जैसे रासायनिक खाद इस्तेमाल कर रहे हैं
जी।
अब WTO का जो मता है
जी जी
ठीक है जी, पूरी दुनिया एक गांव बन गई है
जी,
है जी
जी।
तो अब बोलते हैं भी इसमें अगर कश्यप जी कहते हैं कि अगर हम गोबर खाद से ही आलू तैयार करें
जी,
अंग्रेजी खाद ना डालें, तो उससे जो है किसानों को लाभ हो सकता है कि नहीं हो सकता?
ये इनकी बात बहुत अच्छी है। इनका मानना है कि अगर हम गोबर की खेत जिसको हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं उस तरीके की खेती करें जिसमें रासायनिक खादें और उर्वरक जो है और दवाइयां ना इस्तेमाल करें तो हमें ऊंचे भाव मिलेंगे, जैसे कि कई देशों में मिलते भी हैं, तो उससे ये ज्यादा लाभ कमा सकते हैं, इनका ऐसा मानना है। तो ये बात ठीक है कश्यप जी का, मैं इस बात से सहमत हूँ कि आर्थिक उदारीकरण जो है इसके दौर में और WTO के दौर में जो अधिक गुणवत्ता है वो तो आवश्यक है ही। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है जैसे कि जिसको मैंने पहले भी बताया कि बिना रासायनिक खादों और दवाइयों से जो तैयार करना फसल को तैयार करना, वो वर्तमान में भारत में उसकी जो विपणन व्यवस्था और मांग जो है बहुत अधिक विकसित नहीं हुई अभी।
अच्छा जी,
तो उसकी वजह से जब हम इस तरीके से अपनी खेती करेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग से तो उत्पादन जो है पैदावार घटने की संभावना रहती है
जी।
तो अधिक लाभ कमाने के लिए जरूरी है कि उसके ऊंचे भाव मिले, तो इनको अगर इस तरीके की खेती करनी है तो ये इनको सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उसकी विपणन व्यवस्था वो कैसे करेंगे, या इनके पास सुनिश्चित विपणन की पहले से कोई व्यवस्था है या नहीं है।
अच्छा जी,
ये बहुत आवश्यक है।
तो डॉक्टर साहब, वैसे एक पवन कुमार जी हैं जी गांव पंजाब और ऊना से
जी,
लिखते हैं कि मान लो अगर पानी खड़ा हो जाए खेत में आलू के खेत में या किसी और कारण से आलू सड़ जाए
जी,
तो क्या उस आलू को वही सड़ने दें ताकि वो खाद बन जाए दूसरी फसल के लिए?
जी पवन कुमार जी को मैं ये बताना चाहूंगा कि ये ठीक है कि किसी भी चीज को जैसे चाहे वो आलू हो अगर गल सड़ के वो खाद का काम करता है, परंतु गलने सड़ने के दौरान उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया और बहुत सारे जो दूसरे फंगस वगैरह उसके ऊपर काम करते हैं और जो बीमारी फैलाने का काम भी कर सकते हैं दूसरी फसलों पे। तो इसलिए मैं तो यही चाहूंगा, इनको बताना चाहूंगा कि जो इस तरीके के आलू है चाहे वो पानी खड़ा होने से सड़े चाहे बीमारी लगने से, उनको वो निकाल के एक गड्ढे में डाल के ऊपर से उनको दबा दें, क्योंकि अगर वो उसको गोबर के ढेर पे भी सड़ाएंगे तो भी जिस बीमारी जो से वो इस साल सड़े हैं उस बीमारी के अगले साल आने की संभावना बढ़ जाएगी।
तो ऐसी एक और पत्र जी समस्या है किसानों की जी, गांव गागन जिला मंडी से लिखने वाले हैं जी बालाराम
जी,
इनकी बड़ी समस्या है। लिखते हैं कि जी बीज के रूप में जो है वो छोटे छोटे कटे हुए आलू लगाए
जी,
वो सड़ गए जी, जो पहले साबुत कंद थे पूरे छोटे आलू थे
जी,
उनके अंकुर की तरह जो है वो धागे की तरह छोटे छोटे दाने निकले हुए थे, बाद में मिट्टी से बाहर नहीं निकल पाए। अब ये जानना चाह रहे हैं जी क्या करें ताकि अगले साल जो है अगली बार ये समस्या ना हो, क्योंकि बड़ा नुकसान होता है। देखो किसान जी मेहनत करता है फसल ना मिले तो।
सही बात है जी
जी।
मैं बालाराम जी को बताना चाहूंगा 26 अगस्त को इसी जो हमारी आकाशवाणी पे आलू पाठशाला चली है
जी,
इसके ऊपर भी इसके बारे में बताया जाएगा, उस कड़ी में भी इसके ऊपर बताया जाएगा। पर यहाँ थोड़ा सा फिर बताना चाहूंगा कि जो कटे हुए आलू लगाने की विधि है बीज में, जब आलू हम काटते हैं तो उसको 2% मैंकोजेब यानी के डाइथिन M45 या कोई और भी हो सकती है, डाइथिन M45 जो है वो भी मैंकोजेब है, ये एक दवाई का नाम है
जी।
तो उसके जो 0.2% घोल में वो उसको 10 मिनट तक डुबो के रखें
जी।
0.2% घोल बनाने के लिए 10 लीटर पानी में 20 ग्राम दवाई डाल के उसको वो मिलाएं, और इसको सबसे इतना उपचार करना जो है वो तो आवश्यक है, इसके बाद जो ज्यादा आवश्यक है वो है कि उसको उपचार करने के बाद छाया में सुखा लें
जी
कटे हुए आलुओं को, नहीं तो क्या होगा कि ज्यादा गर्मी या ज्यादा नमी से आलू सड़ जाते हैं। और जो दूसरी इनकी जो बात बताई इन्होंने कि पतले सफेद और कमजोर अंकुर जो है इनके साबुत आलू कंदों में आए हैं, इसका कारण तो ये हो सकता है कि जब इन्होंने आलू लगाया तब गर्मी ज्यादा थी।
अच्छा।
ज्यादा गर्मी में ऐसा होता है कि जो अंकुर आते हैं वो पतले सफेद लंबे और कमजोर आते हैं, जो मिट्टी से बाहर नहीं निकल पाते हैं। बाकी इन्होंने जैसे कहा कि छोटे छोटे दाने थे अंकुरों पर, ये आमतौर होते ही हैं, परंतु लक्षणों को देखे बिना, उन अंकुरों को बिना देखे कोई किसी नतीजे पे पहुंचना संभव नहीं।
तो बलाराम जी का अगला प्रश्न है ये कि जो आलू के पौधे हैं जो लगे हुए हैं वो उनकी लंबाई बड़ी भारी हो गई है, तो क्या उनको काट दें?
ये तो जो लंबाई में आलू का बढ़ना है वो उसके सबसे जो मुख्य कारण है वो ये होता है कि अगर नमी ठीक मिले, पानी ठीक मिले फसल को, और गर्मी ज्यादा हो तो फसल जो है वो ऊपर ज्यादा बढ़ती है, तो जब फसल ऊपर ज्यादा बढ़ती है तो नीचे आलू कम लगते हैं। तो जब अब बरसातों के बाद जब तापमान थोड़ा कम होता जाए, जब भी तापमान थोड़ा कम हो तो उसके बाद फसल को लंबा समय देना चाहिए, अगर वो इनको खाने के लिए आलू बेचना है
जी।
और अगर ये ऐसा नहीं कर सकते हैं, इन्होंने दूसरी फसल कोई जल्दी में लगानी है, तो इनको कम पैदावार में ही आलू उखाड़ना पड़ेगा
जी।
और अगर बीज के लिए इन्होंने फसल लगाई है तो इनको जो है फसल के डंठल माहू जो होता है, एफिड जो होता है, उसका प्रकोप देखते हुए उचित समय पर काटने चाहिए।
अच्छा जी, तो ऐसे बहुत सी चिट्ठियां आई है जिन्होंने पाठशाला के लिए जिन्होंने तारीफ की है। तो डॉक्टर साहब आपने कहा था कि जो पता है आप बाद में बताएंगे और टेलीफोन नंबर जरा जल्दी से बता दें।
हाँ जी, हमारा टेलीफोन नंबर दोबारा से लिख लें, अध्यक्ष सामाजिक विज्ञान संभाग CPRI शिमला
जी।
टेलीफोन नंबर है 2624923
जी। तो जो भी जो किसान भाई हैं 30 अगस्त को जो किसान मेला है उसमें आना चाहे तो इस पते पे चिट्ठी लिख सकते हैं, जिन्होंने चाहे पंजीकरण कराया चाहे नहीं करवाया। साहब आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत
धन्यवाद जी।